الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا، وقال الله تعالى في مقام آخر: وجعلنا نومكم سباتا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم نیند کا نظام سلیپ مینجمنٹ پڑھتے ہیں اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ بیانات امور خانداری میں. اس نے انتظام میں سے سلیپ مینجمنٹ کے تحت ہم نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں، اور آخری کلاس میں جو کہ 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی ہماری، تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انسان کتنا سوئے، ٹھیک ہے، تو کتنی آپٹیمل نیند جو ہے وہ انسان کی ہوتی ہے. تو سائنسدانوں نے جو آبزرویشنز کری ہیں تو ان کے تحت یہ لکھا، یہ بتایا کہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ تو یعنی 20 گھنٹے 20 گھنٹے نیو بورن ہوتا ہے تو 24 میں سے 20 گھنٹے سوتا ہے، یا 18 گھنٹے سوتا ہے تو وہ فریش ہوتا ہے، اور پھر 12 مہینے میں جب وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی نیند 18 کی بجائے 14 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، پھر 3 سال کا ہو جاتا ہے تو 12 گھنٹے کی، 5 سال کا ہوتا ہے تو 11 گھنٹے کی، ٹھیک ہے. تو نارمل جو ایک ایڈلٹ ہیومن بینگ ہوتا ہے تو اس کی جو آپٹیمل نیند ہوتی ہے وہ 7 سے 8 گھنٹے ہوتی ہے، اور یہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند جو ہے نا پھر یہ ساری عمر چلتی رہتی ہے آپٹیمل، ٹھیک ہے. یعنی اتنا سوئے تو اس کی صحت ٹھیک رہے گی، حتیٰ کہ یہ بھی ثابت کیا ہے کہ 7 گھنٹے سے کم سوئیں تو بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور 7 گھنٹے سے زیادہ سوئیں تو بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. ہارٹ اٹیک کا مطلب کیا، یہ نہیں کہ کوئی باہر سے آ کر کے ہارٹ پہ اٹیک کرے گا، بلکہ ہارٹ اٹیک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے اپنے باڈی کی فنکشننگ اتنی اتنی متاثر ہوتی ہے کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے، وہ اپنا کام نہیں کر پاتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن جو ہے وہ اس کے اوپر ایسا یعنی اٹیک ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنا کام کرنا چھوڑ ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ایک بڑی اہم بات جو ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کری تھی وہ ایک تو یہ تھی جو کہ ڈسکس ہو چکی ہے، وہ یہ کہ دیکھیں ضرورت کی بات کریں نا، تو حضرت نے بھی لکھا کہ چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کی نیند کی ضرورت مختلف بنائی ہے، ٹھیک ہے. تو اب عمر کے حساب سے ضرورت چینج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جب بڑے بھی ہو گئے تو اس میں بھی ایک عورت ہے حمل سے ہے تو اس کی ضرورت تھوڑی سی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور باقیوں کی ضرورت جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہے. تو پھر اس سے ہم نے ایک نقطہ یہ نکالا جو کہ پہلے بھی بات ہم کرتے رہے اس کے اوپر کہ بھائی انسان کی ضرورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ حالات واقعات کے حساب سے بدلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. ضرورت سے زیادہ کوئی چیز کی جائے تو اس کو پھر فضول خرچی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ضرورت کے ڈیفینیشن میں جو چیز نہیں آتی ہے پھر بھی اگر آپ اس کو کریں تو اس کو پھر فضول کہا جاتا ہے، اور اگر خرچے کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہو تو پھر اس کو فضول خرچی کہا جائے گا، ٹھیک ہے. تو ضرورت سے کم بھی نقصان دہ، ضرورت سے زیادہ بھی نقصان دہ، تو اعتدال اس کو کہتے ہیں، اعتدال ضرورت کے करने को कहा जाता है, और हमारा दीन पूरा का पूरा एतेदाल का ही नाम है। ठीक है, यानी जहां पे जिस चीज की जरूरत हो वहां पर वो चीज दो। तो यही तो सारा का सारा दीन है। ठीक है, अब उसके ऊपर एक आम सी जहन में बात आती है कि भाई इंसान खुद ही अपनी जरूरत कैलकुलेट कर ले और उसके ऊपर अमल कर ले, तो गोया कि उसने अपने दीन पे अमल कर लिया। ठीक है ना भाई, जब आप ये बात कह रहे हैं कि दीन क्या है, दीन पूरा का पूरा जरूरत का नाम है। ठीक है, तो भाई मैं अपनी जरूरत खुद से क्यों ना कैलकुलेट कर लूं, तो मेरा दीन जो है वो मेरी जरूरत है, तो मैं खुद से अपनी जरूरत कैलकुलेट कर लेता हूं, कर लेती हूं, तो मैं फिर दीन पे अमल करने वाली बन जाऊंगी। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब दिल तो चाहता है आपसे पूछें, इसका जवाब क्या है? ठीक है, चले पूछ लेते हैं। ठीक है, इतनी सारी क्लास में हैं खवातीन, तो पूछ लेते हैं कि खुद ही अपनी जरूरत कैलकुलेट कर लें, गेज कर लें, एस्टिमेट कर लें और उस पर अमल कर लें, तो फिर दीन पे अमल करने वाली बन जाएंगी। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? ऐसा अल्लाह ताला ने हमें इसका केपेबल नहीं बनाया। चलिए, सवाल नहीं पूछ रहे आपसे, खुद ही बता रहे हैं कि, और कॉमन सेंस वाली बात बता रहे हैं, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात बता रहे, कोई नई बात नहीं बता रहे आपके लिए, बहुत सादा सी बात है कि भाई इंसान ने इंसान को इतनी सलाहियत दी ही नहीं, सलाहियत दे के पैदा ही नहीं किया। ठीक है, इसी वजह से अल्लाह ताला ने ये निजाम रखा कि ऊपर से ये हिदायत आएगी। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये काम अपने हाथ में रखा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी क्या जरूरत है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम खुद अपनी जरूरियात कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अल्लाह ताला फिर ये बताते हैं, और कैसे बताते हैं? नबियों के जरिए से बताते हैं। ठीक है, नबियों के जरिए से बताते हैं, वो आकर के हमें बताते हैं कि तुम्हारी ये जरूरत है, तुम्हारी ये जरूरत है, तुम्हारी ये जरूरत है, और उसके अलावा जो तुम कर रहे हो ना, तो ये फजूल है, कम कर रहे हो तो भी फजूल है, ज्यादा कर रहे हो तो भी फजूल है। ठीक है, रूहानी एतबार से तो सारी जरूरियात ऊपर से बताई जाती हैं, और जिस्मानी एतबार से भी जरूरियात कैलकुलेट करना जो है ना, वो भी आसान नहीं होता, उसके लिए भी अल्लाह ताला ने एक्सपर्ट्स बनाए। ठीक है, ये जो डॉक्टर्स होते हैं, ये जो रिसर्चर्स होते हैं, तो अल्लाह ताला उनको एक्स्ट्रा इल्म देते हैं कि वो फिर इंसानों की जिस्मानी जरूरियात को रिसर्च के जरिए से मालूम करें और फिर वो उनको बताएं कि भाई तुम्हारी ये जरूरियात है। ठीक है, आम आदमी चलते फिरते अपनी जरूर इवन जिस्मानी जरूरियात भी कैलकुलेट सही नहीं कर पाता है। ठीक है, और जैसे उन्होंने लिखा कि अकल में ये कैपेबिलिटी नहीं होती, नफ्स और शैतान से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो नफ्स और शैतान जो है ना, वो रूहानी नुकसान तो पहुंचाते ही पहुंचाते हैं, वो इवन जिस्मानी नुकसान भी इंसान को पहुंचाते हैं, उसमें भी इससे मिसकैलकुलेशन करवा देते हैं जरूरत की। ठीक है, जैसे नींद के मामले में, तो नींद जो है बजाहिर तो एक रूहानी मामला नहीं लगता ना, ये तो एक जिस्मानी मामला लगता है ना, लेकिन नींद के मामले में भी मिस कैलकुलेशन करवा देते हैं। ठीक है, कोई जो है वो बहुत ज्यादा सो रहा है, कोई जो है वो बहुत कम सो रहा है, तो वो भी अपना नुकसान कर रहा है, ये भी अपना नुकसान कर रहा है। ठीक है, अच्छा मैं ये बात पिछली क्लास में हमने मुकम्मल कर ली थी कि अगर एक बंदा अपने काम की वजह से कम सोए तो जिस्म में उसका हिसाब रखा जाता है, उसकी बाकायदा जिस्म में गोया के फाइल बनती है, गोया के फाइल बनती है, ये नहीं होता कि वो कागज पर नोट किया जा रहा होता है उसके जिस्म के अंदर, ऐसा नहीं होता, लेकिन गोया के एक फाइल बन रही होती है, उसको कहते हैं स्लीप डेट, यानी नींद का कर्जा। चुनाचे दूसरे चौथे दिन के बाद फिर जिस्म वो जो कर्जा होता है उसको पूरा करता है, और एक दिन बंदे को लंबी नींद आती है। ठीक है, लंबी नींद आती है का मतलब ये नहीं है कि फिर वो लंबी नींद सो भी जाता है, नहीं, उसको लंबी नींद आती है। ठीक है, अब क्या वो सो पाएगा, क्या वो सो पाएगा या वो नहीं सो पाएगा, ये तो उसके हालात पर डिपेंड करता है। हो सकता है उसको लंबी नींद आए तो सही, लेकिन वो फिर भी ना सो पाए, क्योंकि जो जरूरियात जो 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 फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो पहले नहीं सो पाया, तो वो फैक्टर्स अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना भाई, सफर पर है, तो वो सफर की वजह से वो नहीं सो पा रहा, लेकिन सफर तो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, तो नींद तो उसको आ रही है लेकिन अभी भी वो लंबी नींद सो तो नहीं पा रहा। ठीक है, तो होगा क्या कि बस उसकी सेहत और उसके जो दिमाग है, उसके जो मिजाज है, वो खराब से खराब तर होता चला जाएगा क्योंकि वो सो तो नहीं पा रहा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि लंबी नींद आने का मतलब ये नहीं है कि अब वो लंबी नींद सो भी सकेगा। ठीक है, तो खराब होता जाएगा मामला, हत्ता के किसी दिन उसके इस कैफियत की वजह से कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, जैसे गाड़ी चला रहा होगा तो बीच में उसको उभर जाएगी और वो अपनी गाड़ी क्रैश कर देगा, तो ये बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा ना, क्योंकि हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो कोई छोटी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो नहीं चलाते ना, फिर तो वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम चलाते हैं या 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं, तो फिर वो जब गाड़ी इधर से उधर जाएगी तो फिर खुद भी मरेगा दूसरों को भी मारेगा। ठीक है ना, जहाज जहाज का जो पायलट होगा तो वो खुद भी मरेगा और जहाज के अंदर जितने लोग हैं सारे के सारे मरेंगे। ठीक है ना, ये तो नहीं होता कि जहाज में आधे बच जाएंगे आधे मर जाएंगे, पूरे सारे जाते हैं, फिर उसके बाद कोई एक बचता है ना, तो वो बहुत बड़ा उसको फिर वो करामत कहा जाता है या उसको बहुत बड़ा मौजजा कहा जाता है, अल्फाज के गलत इस्तेमाल की वजह से मौजजा भी लोग कह देते हैं उसको। ठीक है, कि एक बंदा बच गया पूरे जहाज में से, लेकिन उम्मीद तौर पर एक भी नहीं बचता। हत्ता के हमने तो जो अभी एक किताब में देखा तो उसमें तो उसने ये रिसर्च भी लिखी हुई थी कि अमेरिका ने जो स्पेस शटल्स बनाई थी, ठीक है, जो कि जहाज की शक्ल की बहुत बड़ी सी एक शटल होती थी, वो बाकायदा जो है ना वो चांद पे जाती थी या स्पेस में जाती थी, फिर वहां से वापस आती थी और बाकायदा जहाज की तरीके से वो लैंड करती थी। ठीक है, इसको स्पेस शटल कहते थे, तो वो रॉकेट की शक्ल में जाती तो ऊपर थी लेकिन वापस जो है ना वो जहाज की तरह से उड़ती भी आती थी। पहले ऐसा नहीं होता था, अपोलो वाले जो सीरीज होती थी वो ऐसे नहीं होता था उसके अंदर। ठीक है, बहरहाल तो स्पेस शटल चैलेंजर जो अमेरिका की बहुत मशहूर स्पेस शटल होती थी, कई वो सफर कर चुकी थी, बिल आखिर पता नहीं कौन सा वो साल था, हमने तो वो देखा भी था बकायदा उसको टीवी के ऊपर, कि जब वो लॉन्च हुई उसके अंदर 8 शायद उन्होंने लोग भेजे थे, उनमें से पहली दफा ना एक स्कूल टीचर भी जो है ना वो औरत थी वो भी जा रही थी स्पेस शटल चैलेंजर के अंदर, तो वो चैलेंजर जैसे ही लॉन्च हुई तो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो ब्लास्ट हो गई। ठीक है, तो बहुत बड़ा ही वाकया था, पूरी दुनिया में उसकी तस्वीरें भी जो है वो फैली, हर जगह देखो बात हो रही, स्पेस चैलेंजर जो है वो ब्लास्ट हो गई, क्रैश हो गई वो, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने तहकीकाती कमेटी बनाई कि भाई क्या वजह बनी कि स्पेस शटल चैलेंजर जो है वो क्रैश हो गई, तो उसके जो फिर फाइंडिंग्स आई रिसर्च कमेटी की, तो उन्होंने ये कहा कि और भी रीजंस होंगी इसकी लेकिन एक रीजन उसकी ये थी कि जो स्पेस शटल चैलेंजर को लॉन्च करने वाली टीम थी, ठीक है, क्योंकि ये कोई पायलट को थोड़ी होता है जो कि रॉकेट को ऊपर लेके जा रहा हो, रॉकेट के अंदर बैठा हुआ पायलट को थोड़ी होता है, वो तो अपने इंजन्स के जोर के ऊपर वो ऊपर जा रहा होता है, तो जब वो स्पेस में पहुंच जाता है तब जो उसके अंदर बैठे हुए लोग होते हैं वो उसको मैनूवर कर रहे होते हैं, लेकिन लॉन्चिंग के वक्त तो उसको कंट्रोल जो है वो पूरा का पूरा एक एक टीम कर रही होती है जो कि कंट्रोल टावर में बैठी हुई होती है, तो वो जो कंट्रोल टावर के अंदर जो टीम बैठी हुई थी ना जिसने कि ये फैसला करना था कि ये किस वक्त लॉन्च की जाएगी, वो टीम जो है ना स्लीप डिप्राव्ड थी, वो टीम जो है वो पिछले 24 घंटे से ज्यादा से जो है वो जागी हुई थी, वो 2 घंटे की उनकी नींद हो गई थी 24 घंटा पहले, और फिर वो मुस्तकिल जागे हुए थे, मुस्तकिल मीटिंग्स चल रही थी, मुस्तकिल ये डिसीजन मेकिंग हो रही थी कि ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब इस वक्त लॉन्च करना है, अब इस वक्त लॉन्च नहीं करना। तो उन लोगों ने ये डिसीशन लिया जो कि गलत डिसीशन था कि इस सुबह को जो है ना वो इसको लॉन्च कर दें। हालांकि सुबह के हालात अच्छे नहीं थे, वो टेम्परेचर्स बहुत ही फ्रिजिड किस्म के टेम्परेचर्स हो चुके थे और इन्वायरमेंट सही नहीं थी, तो लॉन्च नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो लोग इतना तंग आए हुए थे अपने नींद की कमी की वजह से कि उन्होंने फैसला दे दिया कि नहीं लॉन्च कर दो। तो वो लॉन्च हो गई और फिर उसके बाद वो नहीं सस्टेन कर सकी। ठीक है, तो इतना बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो बड़ा प्रोजेक्ट था उसकी जो एक्सीडेंट हुआ वो भी किस वजह से, उसकी भी नतीजा यही नींद की कमी निकली। और सड़कों के ऊपर तो ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है वो बहुत ज्यादा ही होते हैं, सबसे ज्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते ही रात के वक्त है, जो 2 बजे से लेकर के 4 बजे का टाइम होता है ना, जिस वक्त सबसे ज्यादा नींद आती है आम इंसान को, जाहिर है जो कि रात को नहीं सो रहा होता, तो उस वक्त जो है ना वो सबसे ज्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं। हम बहुत पुरानी बात है, 26 साल पहले की कम अज कम मुझे याद है कि मैं कोई मेरे पास मटेरियल आया था इंश्योरेंस कंपनी वाला कि भैया आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा लें हमारे पास, हमारी कंपनी से इंश्योरेंस करवा लें और हम इतने अच्छे आपको पैकेज देंगे, ये देंगे वो देंगे। तो उन्होंने फिर अपनी इंश्योरेंस को सेल करने के लिए ना एक फैक्ट भी लिखा हुआ था, वो क्या था कि भाई इंश्योरेंस जो है ना वो, ताकि वो अपने आप के वो उधर सेल करने के लिए, फिर वो इधर उधर की बातें भी लिखते हैं ना आपको कन्विंस करने के लिए कि हमारी इंश्योरेंस नहीं। तो उन्होंने एक फैक्ट ये लिखा हुआ था अपने ब्रोशोर के अंदर कि अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो अमवात होती हैं वो सैटरडे नाइट को होती है, सैटरडे नाइट, यानी हफ्ते और इतवार की, यानी होती है ना उसमें भाग नहीं, मिड से लेके अर्ली मॉर्निंग का जो है उसमें 7 भाग जो है वो 30,000 से ज्यादा अमरीकी शहर। और फिर उसने लिखा था कि ये तादाद इवन वियतनाम वॉर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकी सोल्जर्स मरे थे वियतनाम वॉर में, तो ये तादाद उनसे भी ज्यादा है, उनमें टोटल वियतनाम वॉर में जितने लोग मरे ना तो उससे ज्यादा लोग जो हैं वो हर साल ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। तो उसकी रीजन क्या होती है, उसकी रीजन एक तो ये होती है कि ये पार्टीज अटेंड करते हैं क्योंकि वो छुट्टी का दिन होता है, तो वो रात के वक्त जो है वो पार्टीज हो रही होती हैं नाइट क्लब्स में और घरों के अंदर, फिर वहां से जो है वो शराब पी करके निकलते हैं, तो शराब के असर में होते हैं तो वो जाकर के फिर गाड़ी मार देते हैं अपनी। ठीक है, और दूसरी रीजन क्या होती है कि नींद नहीं हो रही होती इनकी, तो नींद की कमी की वजह से भी ये गाड़ियां मार करके फिर अपने आप को भी मारते हैं, दूसरों को भी मारते हैं। ठीक है, तो ये जो लंबी नींद का कर्जा होता है ना, ये कर्जे से ऐसा नहीं होता कि अब जो है वो पूरा कर्जा उतर गया और इंसान बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, नहीं। पहली बात तो ये कि कर्जा उतर ही नहीं पाता अक्सर लोगों का क्योंकि उनको लंबा सोने का मौका ही नहीं मिलता, और दूसरे के जो आपका लंबी नींद अगर आप कर तो रीख आपके अंदर हो चुकी है ना सोने की वजह से, वो कोई थोड़ी रिपेयर हो जाती है एक दफा लंबी नींद सोने, वो कोई थोड़ी रिपेयर हो जाती है। ठीक है, तो वो तो हो चुकी सो हो चुकी, नुकसान हो चुका सो हो चुका। ठीक है, तो ये नींद के कर्जे के भी जो कॉन्सेप्ट है ना इसको भी समझने हैं कि ऐसा नहीं है कि अब आपने कर्जा तो अपने ऊपर चढ़ा लिया तो एक दिन उतार देंगे और सारा मामला खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये पैसे वाले कर्जे वाला मामला नहीं है कि उतार दिया और खत्म हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद अगला टॉपिक है स्लीप डिसऑर्डर्स, इंतशारे नींद। तो उसके तहत फरमाते हैं कि स्लीप डिसऑर्डर क्या है, कहते हैं कि इसके इल्म को या डिसऑर्डर कहते सोमनीपैथी, जैसे होम्योपैथी, ये शायद जर्मन लैंग्वेज का लफ्ज है, तो सी सोमनी को कहते हैं और पैथी या सफरिंग को कहते हैं, तो नींद की सफरिंग, नींद की बीमारी, उसको उन्होंने अपने ग्रीक लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में सोमनीपैथी का नाम दिया। और फिर वही अक्सर होता है कि वो दूसरी लैंग्वेज का लफ्ज होता है लेकिन अंग्रेजी में भी फिर वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तो खैर, स्लीप डिसऑर्डर के इल्म को सोमनीपैथी कहते हैं। इंसान सोना चाहता है मगर उसको नींद नहीं आती, करवटें बदलता रहता है और नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं उसको। शायद उस गोली का नाम नींद का हार्मोन होता है, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को वो गोली खिलाते हैं ताकि बच्चे सो जाएं, जिसको तंग ज्यादा कर रहे होते हैं ना, तो उनको वो वाली गोली खिला दी जाती है ताकि वो सो जाएं। ठीक है, ऐसा करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, सही तरीके से सुना है, ऐसी गोलियां खिला के सुला रहे। अच्छा, तो इसको स्लीप डिसऑर्डर यानी इंतशार नींद कहते हैं। ये स्लीप डिसऑर्डर, इंतशार नींद, औरतों के अंदर मर्दों की निस्बत ज्यादा होता है। ठीक है, अब यह है भी औरतों की क्लास, तो आपके जिन्स की बात हो रही है कि औरतों के अंदर ये स्लीप डिसऑर्डर ना मर्दों से ज्यादा होता है। वजह क्या है? वजह भी बताते हैं कि चूंकि औरतों के मसले भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, उनके जिस्म में हॉर्मोन्स की तब्दीलियां ज्यादा होती हैं, हॉर्मोनल चेंजेस, इसलिए स्लीप डिसऑर्डर, इंतशार नींद भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक दो साइंस के ऊपर डाल दिया ना हजरत ने बड़े मजे से। ठीक है, मतलब साइंस के ऊपर हजरत ने डाल तो दिया है लेकिन उसकी भी हिकमत होती है, हजरत भी थोड़ा ना जरा लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि शैतान भी तो फिर दूसरी तरफ होता है ना, एक तरफ से शेख बात कर रहा होता है ना, तो दूसरी तरफ से शैतान भी तो बात कर रहा होता है ना। ठीक है, तो शैतान की बातों को काउंटर करने के लिए शेख को कभी जो है ना वो अंदाज बदल के भी बात करनी पड़ती। ठीक है, तो हॉर्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं बेचारियां। ठीक है, तो वो बेचारियां इस वजह से क्या करें बेचारी, तो इस वजह से ना उनकी, लेकिन हम जो है वो थोड़े से टेढ़े किस्म के हैं। सही है, तो हम ये बात भी आपके सामने खोल दें कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, तो वो फिर उसके ऊपर फिर क्वेश्चन होता है कि भाई क्यों हार्मोनल डिसऑर्डर। लेकिन भाई अल्लाह ताला ने जो बनाया है निजाम, तो अल्लाह ताला ने तो लकद खलकना इंसान फी अहसन तकवीम, बेहतरीन तकवीम के ऊपर, तो जो बंदे की जरूरत होती है वही चीज हो रही होती है ना उसके अंदर। ठीक है, तो वो जो उसकी जरूरत है तो फिर वो उसके नुकसान के सबब कैसे बन रही है, जो अल्लाह ने निजाम बनाया है वो अल्लाह का निजाम नुकसान के का सबब कैसे बन रहा है। ठीक है, तो हॉर्मोनल डिसऑर्डर तो अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है, तो फिर ये नुकसान का सबब क्यों बन रहा है? तो भाई इसका जवाब ये होगा कि ये हॉर्मोनल डिसऑर्डर जो है ना, ये तो साइंस की नजर से बताया है ना। ठीक है, और साइंस क्या करती है? साइंस जो है वो तो सिर्फ जो चीज हो रही होती है उसको ऑब्जर्व करके आपको बता रही होती है ना। साइंस किसी चीज को फोर्स तो नहीं कर रही होती है ना कि अब साइंस जो है वो हार्मोनल डिसऑर्डर को फोर्स कर रहा है, नहीं, ये साइंस का काम ही नहीं है करने का, साइंस ये काम कर ही नहीं सकती। तो साइंस तो सिर्फ जो है वो ऑब्जर्वेशन करके बता रही है कि भाई ये हो रहा है, ये औरत की बदन में ये चीज हो रही होती है, ये तब्दीलियां जो है वो मर्द के बदन में हो रही होती है। लेकिन ये तब्दीलियां हो क्यों रही होती है, तो ये हो जो रही होती हैं, तो ये तो फिर किसी दूसरी वजह से हो रही होती है। ठीक है, डिसऑर्डरली कोई काम हो रहा होता है तो ये तो फिर किसी दूसरी वजह से होता है, वो वजह क्या होती है? वो वजह फिर इंसान की अपनी कोई गलती होती है। ठीक है, इंसान की अपनी कोई गलती होती है कि जिसकी वजह से उसके बदन के अंदर भी जो है ना वो तब्दीलियां ऐसी आनी शुरू हो जाती हैं जो कि उसके लिए तकलीफ का सबब बन रही होती है। ठीक है, वरना अल्लाह का निजाम जो है वो तो इंसान की जरूरत के अनुसार निजाम होता है, और हम कई दफा इस बात को भी डिस्कस कर चुके हैं मुख्तलिफ मौकों के ऊपर कि भाई जब ये जरूरत थी तो अल्लाह ताला ने ये चीज इंसान को पहुंचा दी, और जब उसकी जरूरत खत्म हो गई तो फिर वो चीज खत्म हो गई। ठीक है, तो हॉर्मोन्स की तब्दीलियां तो हो रही हो, लेकिन ये तो किसी वजह से होता है ना। तो अब ये तब्दीलियां डिस्बैलेंस के फॉर्म के अंदर हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो फिर तो वो अपने हाथ की कमाई होती है, अपनी कोई गड़बड़ की भी। वरना तो हम ये ऐसी बात जो है वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं होती है, आवाम को ये बात पसंद नहीं आती है हमारी बात। ठीक है, लेकिन आवाम ने अगर अपनी इसलाह करनी है, अपनी गलतियों को ठीक करना है, तो फिर उनको ये बात समझनी पड़ेगी। धोखे में रह करके तो फिर आप अपनी इसलाह नहीं कर सकते। तो ये बात सोचने की है कि भाई हम गलती ना करें अपनी तरफ से। तो फरमाया कि उनके जिस्म में हॉर्मोन्स की तब्दीलियां ज्यादा होती हैं, इसलिए स्लीप डिसऑर्डर, इंतशारी नींद भी ज्यादा होता है। औरतों की जिंदगी में अब थोड़ा सा, पहले हल्की बात करी ना, साइंस पर डाल दिया, अब आ रहे हैं जरा हकीकत के ऊपर। ठीक है, वो हकीकत क्या कि औरतों की जिंदगी में स्ट्रेसेस भी ज्यादा होते हैं, या बीमारी ज्यादा होती है, या प्रेगनेंसी हमल की वजह से जिस्म के अंदर साइकिल आता है, या उनको जो महाना अयाम आते हैं उनकी वजह से भी जिस्म में तब्दीलियां आती हैं। ठीक है ना, पता नहीं क्यों 21st सेंचुरी में ये सारी चीजें शुरू हो गई, ये पहले नहीं होती थी। जैसे पहले औरतों को ना अय्याम आते थे, ना पहले औरतों को जो है वो हमल होता था, ना पहले जो है वो, अब जो है ना सारे स्ट्रेसेस जो है ना वो 20वीं सदी और 21वीं सदी की औरत को आने शुरू हो गए। पहले जो है वो ये सब भी होता था, लेकिन जिंदगी भी सुकून वाली होती थी। तो क्यों भाई, क्या फर्क हो गया? फर्क जो है वो यही हो गया कि निजाम तो ये पहले भी चल रहा होता था, अब भी चल रहा होता था, लेकिन गुनाहों की वजह से जो दुनिया का निजाम खराब हुआ है, मुआशरे का निजाम खराब हुआ है, और इंसान का अपनी जो है वो हरकतें खराब हुई हैं, तो उनकी वजह से उसके ऊपर ये स्ट्रेसेस जो है ना वो भी आने शुरू हो। ठीक है, पहले जो है वो एक फ्लो के थ्रू चल रहा होता था, शुक्र गुजारी की कैफियत। ठीक है, इंसान जो है ना उसको वो एक शुक्र की कैफियत में रहता था कि वाकई मैं तो इस काबिल भी ना था, और मुझे जो ये मिल गया है तो अल्लाह का शुक्र है कि जो मुझे मिली है। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो है वो सिचुएशन क्या हुई हुई है कि धोखे में डलने की वजह से, ठीक है, धोखे में आने की वजह से इंसान ये समझना शुरू हो गया कि मैं जो कुछ मुझे मिला हुआ है ना, मैं तो इसी काबिल था कि मुझे ऐसा कुछ मिलता, आई डिजर्व ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो मुझे तो इससे भी ज्यादा मिलना चाहिए था। नाशुक्री कहाँ से शुरू होती है? नाशुक्री उधर से शुरू होती है कि जो मुझे मिला हुआ है ना, मुझे तो उससे भी ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई मुझे? मुझे मिलना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो मुझे मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो ये फिर नाशुक्री बन जाता है। और इसकी बेस क्या होती है, इसकी जड़ क्या होती है? इसकी जड़ ये होती है कि जो मिला हुआ होता है उसको अपना हक समझ रहा होता है। ठीक है, तो जो मिला हुआ होता है उसको अपना हक समझ रहा होता है ना, यहाँ ये नाशुक्री नहीं होती, ये नाशुक्री की बुनियाद होती। ठीक है, इसको तकब्बुर भी कहते हैं, एक्चुअली इसको तकब्बुर कहते हैं, जो मिला हुआ है, या वो जो टाइप की चीज भी इसको कह सकते हैं कि ये जो मुझे मिला हुआ है ना, ये तो मेरा हक था, ये अलग कैफियत है। लेकिन ये सबब बनती है अगले दर्जे की। अगला दर्जा क्या है कि मुझे तो और भी मिलना चाहिए था जो नहीं मिला, ये नाशुक्री बनता है, ये अगला दर्जा है। नाशुक्री इज द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, लेकिन बेस लेवल पहले होता है, उसके ऊपर फिर नाशुक्री का लेवल बिल्ड होता है। ठीक है, तो ये नाशुक्री जब आती है इंसान के अंदर, तो फिर वो स्ट्रेसफुल होता है कि भाई क्यों ना मिला। अब वो उसकी रीजंस ढूंढता है, अच्छा उसकी वजह से नहीं मिला, अच्छा उसकी वजह से मुझे नहीं मिला। ठीक है, वो रुकावट बन गया मुझे मेरा मुकाम ना मिलने की में जो रुकावट बना है ना, तो वो शख्स है। तो अब देखें, अब इस नाशुक्री की वजह से दुश्मन भी पैदा होती है, ठीक है, कि जिसको ये सबब बन समझ रहा होता है कि उसकी वजह से मुझे वो नेमतें नहीं मिल रही हैं, तो उसके दिल में फिर उसके खिलाफ नफरत आती है, बहुत आता है, कीना आता है, ठीक है। तो ये दुश्मनी फिर इंसानों के दरमियान नाशुक्री के सबब से फिर दुश्मनी भी क्रिएट होती है, ये थर्ड लेवल है, ठीक है। तो जिंदगी में स्ट्रेसेस भी ज्यादा होते हैं, या बीमारी ज्यादा होती है, या प्रेगनेंसी हमल की वजह से जिसम के अंदर साइकिल आता है, या उनको जो माहाना अय्याम आते हैं उनकी वजह से भी जिसम में तब्दीली आती है। तो जो औरतें जॉब करती हैं उनमें फिर उनमें से 30% औरतें ऐसी होती हैं जिनको नींद के मसाइल पेश आते हैं, ठीक है। पता नहीं, आजाद जी तो जॉब करने के खिलाफ नहीं थे, है ना भाई, पता नहीं क्यों ऐसी बातें कर देते हैं कि जो औरतें जॉब करती हैं ना तो उनको नींद के मसाइल ज्यादा पेश आते हैं, 30%। अब ये 30% जो है ये भी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर है, वो पोल्स करते रहते हैं ना, कभी एक सैंपल लेते हैं, कभी 1,000 औरतों से हमने ये सवाल किया तो उनमें से 30% औरतों ने ये जवाब दिया कि हाँ उनके जो है ना वो नींद के मसाइल उनको पेश आ रहे हैं। तो वो फिर अपने पोल के जो रिजल्ट को जो है ना वो पब्लिश कर देते हैं कि जी 30% औरतों के अंदर जो है वो नींद के मसाइल पेश आते हैं, लेकिन हम तो नहीं मानते इस बात को क्योंकि हम तो बायस्ड हैं, ठीक है ना, हम तो इस बात को नहीं मानते, हम तो बायस्ड हैं, हम तो ये कहते हैं कि जो भी अल्लाह के निजाम के खिलाफ जाता है तो उसको मसाइल पेश आते हैं। सिर्फ 30% को थोड़ी मसाइल पेश आते हैं, कभी अल्लाह के निजाम के खिलाफ 100% लोग जा रहे हैं और 30% को मसाइल पेश आ रहे हैं, नो एब्सोल्युटली नॉट। हम ये कहेंगे कि 30% जो है ना वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उनको मसाइल पेश आ रहे हैं, और बाकी जो 70% है ना, या तो उनको मसाइल पेश आ रहे हैं लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं उनको पेश नहीं आ रहे, आ तो रहे हैं मसाइल पेश लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं, पोल के अंदर जो है ना वो सही बात लिख नहीं रहे कि उनको मसाइल पेश नहीं आ रहे, या ऐसा भी मुमकिन है कि मसाइल पेश तो आ रहे हैं उनको लेकिन उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि उनको मसाइल पेश आ रहे हैं, इस वजह से वो गलत फहमी की वजह से पोल के अंदर ये लिख रहे हैं कि नहीं उनको कोई मसाइल पेश नहीं आ रहे। तो अब पोलिंग जो है, ये ओपिनियन पोलिंग जो है, ये तो इंसान कर रहे हैं ना, तो इंसानों को क्या पता कि जवाब देने वाला जो है वो सच जवाब दे रहा है या झूठ जवाब दे रहा है। या गलत फहमी की वजह से, ठीक है, वो पोल करने वाले तो अल्लाह के निजाम को समझने वाले या अल्लाह के निजाम से बायस नहीं होते हैं ना वो लोग, तो हम तो हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो हैं ना, और हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, और अल्लाह करे हम मरते दम तक अल्लाह के निजाम की तरफ बायस्ड रहें ताकि ईमान पे हमें मौत आ जाए, ताकि हमें मौत ईमान पर आए, और अगर हम अल्लाह के निजाम से के खिलाफ बायस में चले जाएंगे तो फिर तो हमारा अपना ईमान खतरे में पड़ जाएगा, तो ईमान पे मौत कैसे आएगी, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है एहसान अदना पर पकड़ क्या, अल्लाह का शुक्र है और एहसान के हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने फजल फरमाया कि हमें बायस्ड बनाया, बायस्ड टूवर्ड्स व्हाट, अल्लाह का निजाम, ठीक है, जो कि वजअलना लैला लिबासा वजअलना नौमा सुबाता, ये अल्लाह का निजाम है जो कि अल्लाह ने अपने कुरान में हमें बता दिया, ठीक है। तो हम तो बायस्ड है कि भाई यही तरीका है सुकून का, यही तरीका है इत्मीनान का, यही तरीका है ठीक रहने का, और कोई तरीका हो ही नहीं सकता ठीक रहने का। तो बहरहाल हजरत ने यहाँ पे तो जनरल ऑडियंस के साथ करते हैं और बयान में तो फरमा दिया कि भाई 30 औरतें, और रिसर्च का ये रिजल्ट निकला कि जी 30 औरतें ऐसी होती हैं, 30% औरतें हैं कि जिनको नींद के मसाइल पेश आते हैं, जब नींद के मसाइल हों तो औरतों को फिर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम पेश आता है, यानी उनकी टांगों में कमजोरी होती है और हल्का हल्का दर्द होता है। ऐसी औरतें आमतौर पर डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। ठीक है, तो अब ये चंद एक जो हैं डॉक्टर्स हैं, वो फिर अपने डॉक्टरी बैकग्राउंड के ऊपर चीजों को देख रही होती हैं, तो भाई उनके उनसे तो अल्लाह बचाए। ठीक है, हम उनसे तो भाई वो आपने अपना MBBS किया है, आपने जो है वो आगे प्रैक्टिस किया है, तो जाहिर है आपका पूरा का पूरा एक बैगेज है उस नॉलेज का, तो हम आपसे तो बात नहीं कर सकते। ठीक है ना, लेकिन हम तो उनसे कर रहे हैं ना, जो कि हमसे भी कम मेडिकल इल्म रखने वाली खुवातीन, तो हम तो बस गूगल शेख गूगल से मेडिकल की थोड़ी सी टर्म सीख ली, या उधर से कुछ चीजों के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर ली, तो वही हम आगे से बयान कर रहे हैं। हजरत का भी यही मामला था, हजरत भी कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं थे, तो कभी कहीं की रिसर्च पढ़ ली, कभी कहीं की रिसर्च पढ़ ली, तो उसको जो है वो अपने बयान के अंदर समझाते रहते थे। ठीक है, तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो हजरत ने यहाँ पे फरमाया कि जब नींद के मसाइल हो तो औरत को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम RLS, इसका शॉर्ट फॉर्म RLS बनता है, तो ये पेश आता है। तो हमने थोड़ी बहुत जो रिसर्च करी तो उसमें तो ये लिखा हुआ था कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो RLS होता है ना, तो इसके जो कॉजेस साइंसदानों ने डिटरमिन किए हैं, वो या तो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, या जो है वो आयरन डेफिशिएंसी होती है, या कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है। ठीक है, या जो है वो प्रेगनेंसी, ये भी लिखा हुआ था यहीं पे कि RLS की जो सिचुएशन जो होती है ना कंडीशन, ये भी टांगों में हल्का हल्का दर्द मुस्तकिल रह रहा है, या अकड़न अकड़ रही है टांगे, तो इसकी रीजन जो है ना वो ये होता है। ठीक है, और ये भी लिखा हुआ था कि ये फिर एग्रेवेट हो जाती है, मजीद बढ़ जाता है ये RLS की कंडीशन बाय कैफीन और निकोटीन और अल्कोहल यूज से, यानी शराब नोशी से, और बहुत सारी बीमारियां जहां आप उनका रिसर्च करें ना, उसमें यही लिखा होता है, ये जरूर लिखा होता है कि जी अल्कोहल यूज जो है ना, इसकी वजह से ये बीमारी एग्रेवेट हो जाती है, इसकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है, इसकी वजह से। ठीक है, तो अल्कोहल तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने जो हराम करार दी है ना, तो ऐसा ही लगता है कि जैसे कि हराम करार देने से पहले जो है ना, वो इंसान की बॉडी ऐसी थी कि जो कि अल्कोहल यूज की वजह से ना इन बीमारियों का शिकार नहीं होती थी, या अगर होती भी थी तो वो उसके अंदर कुछ नेचुरल फिक्स भी होता होगा, तो अल्लाह ताला ने शराब को हराम ही करार दिया था, शराब हलाल थी पिछली शरीयतों के अंदर। ठीक है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में फिर शराब जिस वक्त हराम करार दी गई, तो अब अल्लाह ने हराम करार दिया ना, नबी ने तो हराम करार नहीं दिया, अल्लाह ने शराब को हराम करार दिया है, तो अल्लाह तो खालिक भी है ना, नबी अगर हराम करार देते अपनी तरफ से तो नबी खालिक तो नहीं है ना। ठीक है, नबी खालिक तो नहीं है ना, शरीयत के अंदर जो नबी की जुबान से हराम करार दिया गया है, लेकिन असल में हराम तो अल्लाह करार दे रहे हैं उसको, तो अल्लाह तो खालिक भी है, तो अल्लाह खालिक है, तो इससे क्या बात साबित होती है कि जो इंसान के बदन के अंदर जो अल्कोहल की नुकसान वाला इफेक्ट था, तो वो नुकसान वाला इफेक्ट भी अल्लाह ताला ने उसी वक्त बनाया कि जब इसको हराम करार दिया। उससे पहले अल्लाह ताला जो इंसान की बॉडीज दुनिया के अंदर बना रहे थे, तो वो बॉडीज ऐसी थी कि जो कि अल्कोहल के इफेक्ट को कंट्रोल कर लेती होंगी। ठीक है ना, कंट्रोल कर सकती होंगी, उनको झेल सकती होंगी, लेकिन अब अल्लाह ताला ने वो झेलने की सलाहियत इंसान के बदन में से निकाल ली। जब उसकी सलाहियत को निकाल लिया कि अल्कोहल के नुकसान को झेलने की सलाहियत इंसानी बदन में खत्म हो गई, उसी वक्त अल्लाह ताला ने अल्कोहल को हराम करार दे दिया। ठीक है ना, क्योंकि शरीयत के अंदर जो चीज हराम होती है वो इसीलिए अल्लाह ताला उसको हराम करते हैं क्योंकि वो इंसान के लिए नुकसानदेह होती है, जो बेनुकसान वाली चीज होती है वो हराम नहीं करार देते, जो नुकसान वाली चीज होती है वो हराम करार देते। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अब इंसान को अपना नुकसान नजर भी आना शुरू हो जाए। 1400 साल पहले जब अल्लाह ताला ने शराब को हराम करार दिया, तो उस वक्त इसका नुकसान क्या इंसानों को नजर भी आना शुरू हो गया था? नहीं, उस वक्त तो ऐसी कोई साइंसी इजादात नहीं हुई थी कि इंसान की बॉडी के अंदर जो तब्दीलियां एल्कोहल की वजह से हैं वो इंसानों को नजर भी आ रही हूं अपने माइक्रोस्कोप्स के अंदर। नहीं, उनको नजर तो नहीं आई थी ये तब्दीलियां, ठीक है। लेकिन ईमान तो यही है ना कि इस बात को माना जाए कि अल्लाह जिस चीज को हराम करते हैं वो नुकसान वाली चीज हो, ठीक है। बहरहाल, तो RLS जो है ना, तो इसका फिर ये हुआ कि भी इसके जो कॉजेस इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं ना, वो कॉजेस तो डिफरेंट हैं, लेकिन ये नींद की कमी यानी कैफीन नींद की कमी को कॉज करता है, ठीक है। एल्कोहल का भी ताल्लुक जो होता है वो नींद के ऊपर होता है। निकोटीन का भी, निकोटीन क्या चीज होती है, वो जो सिगरेट्स के अंदर, जो टोबैको के अंदर जो केमिकल इफेक्ट होता है करने वाली चीज होती है, उसको निकोटीन कहते हैं, ठीक है। कुछ दवाओं के अंदर भी होती है ये निकोटीन, तो इससे ये एग्रेवेट हो जाती है। अच्छा, ये रिलीफ कैसे होती है? RLS की जो कंडीशन होती है इसके अंदर कमी कैसे आती है? ये बढ़िया रेलेवेंट बात है जो हमारे इस टॉपिक से रेलेवेंट है। वो क्या कि ये बाय प्रैक्टिसिंग कंसिस्टेंट स्लीप हाइजीन एंड लिमिटिंग कैफीन बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग टू बेड, नींद यानी नींद के वक्त से पहले आप कैफीन का इस्तेमाल ना करें ताकि आपकी अच्छी नींद आ सके, क्वालिटी नींद आ सके, ठीक है। तो इससे जो है ना वो RLS का जो सिम्टम होता है उसमें रिलीफ मिलती है, वो कम होता है, ठीक स्लीप हाइजीन से, कंसिस्टेंट स्लीप हाइजीन प्रैक्टिस करने से। तो गोया के RLS का फिर ना डायरेक्टली अगर ना भी बना ताल्लुक नींद से, तो इनडायरेक्टली तो बन गया ना कि भाई इसके अंदर रिलीफ तो मिलेगा ना आपको अच्छी तरीके से नींद पूरी करने से, ठीक है। बहरहाल, सुने आपको मैसेज लिखा है, वो देख लेते हैं। तंबाकू नोशी पान जो खाते हैं क्या इससे भी होता है? भाई तंबाकू में होता है, वो पान के अंदर आप खाएं क्या, आप जो है वो सिगरेट के अंदर उसको पिए? बाकी ये वाला सवाल आप डॉक्टर को पूछ लेगा, पान में कितना तंबाकू है। अच्छा, आगे जो टॉपिक है वो नींद के मुताबिक इस्लाम की तारीफ। हमारे यहाँ तो नींद के मुताबिक इस्लाम की तारीफ जाती है ना कि आप सोए नहीं, ठीक है, यानी जागने की रात आ गई, भी जागने की रात आ गई और जागे चले जा रहे हैं, और जो है वो ना सोने को हम इबादत समझते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं कि भाई नींद के मुताबिक इस्लाम की तालीम क्या है। इस्लाम ने हमें बताया कि बंदे को चाहिए कि वो अपनी नींद को पूरा करे। उम्महातुल मोमिनीन में से सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐसी थी कि उनको इबादत का बहुत शौक था। हदीस मुबारक में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ लाए तो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये वो वाली उम्महातुल मोमिनीन में जो ज़ैनब रहते हैं, एक तो ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की पहली बेटी भी थी ना, लेकिन ये बल्कि दो उम्महातुल मोमिनीन का नाम ज़ैनब था, ज़ैनब बिनत खुज़ैमा और ज़ैनब बिनत क्या था, तो उनमें से एक ये थी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो घर में तशरीफ लाए तो देखा कि उन्होंने दो सुतूनों के दरमियान एक रस्सी बांधी हुई थी, और ज़ैनब बिनत जहश, हाँ, जिनके भाई अब्दुल्ला बिन जहश थे ना, ज़ैनब बिनत जहश दूसरी वाली थी। तो उन्होंने दो सुतूनों के दरमियान एक रस्सी बांधी हुई थी और उसके दरमियान में मुसल्ला बिछाया हुआ था, यानी ऊपर से रस्सी बांधी हुई थी और वहीं तो बिल्कुल बीच में ना, दोनों सुतूनों के बीच में उन्होंने अपनी जानेमाज बिछाई हुई थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपने ये रस्सी क्यों बांधी हुई है? तो कहने लगी कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे ऊपर नींद गालिब आती है तो मैं सोने की बजाय इस रस्सी का सहारा ले लेती हूँ, ठीक है, यानी मैं टेक लगा लेती हूँ। अब किसी तकिए से टेक लगा लेना तो वो तो आप कयाम की हालत में नहीं कर सकते ना, तो उन्होंने अपनी अकल से सोचा, तो उनकी अकल में ये तरीका आया कि चलो मैं रस्सी बांध लेती हूँ, और वो इतना टाइट बांधा था उस दोनों के दरमियान बांधा था कि वो रस्सी टूटे भी नहीं, और वो भी मोटी सी जरा जोरदार किस्म की रस्सी, तो वो उससे टेक लगा लेती थी। रस्सी से। तो इस तरह से ना उनका कयाम भी खत्म नहीं होता था और टेक भी मिल जाती थी उनको। तो मैं रस्सी का सहारा ले लेती हूँ और वक्त गुजार लेती हूँ और अपनी रात इबादत में गुजार लेती हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना करो, जब तुम्हें नींद आया करे तो सो जाया करो, और जब नींद खत्म हो जाए तो फिर अल्लाह की इबादत किया करो। ठीक है, तो ये उम्महातुल मोमिनीन की क्या माशाल्लाह जिंदगी थी कि इबादत में लगाती थी, इबादत का शौक होता था। ठीक है, लेकिन उसमें भी जो एक्सेस में जा रही थी ना, उससे नबी रसूल कि नहीं, नींद की जब आ रही है ना तो उस वक्त ये टेक लगाने शगाने के ये अपनी अकल इस्तेमाल ना करो इसके लिए, बल्कि तुम सो जाया करो। ठीक है, अच्छा, इसमें जो सही बुखारी की हदीस नंबर 1099 लिखा हुआ है, हमने सर्च किया तो हमें इस नंबर के ऊपर ये वाली हदीस नहीं मिली। गालबन आगे जाकर ये हदीस आती है, उतना मुझे मौका नहीं मिला चेक करने का बुखारी शरीफ में, लेकिन अगली हदीस को मौका मिल गया तो वो आपको बताते हैं। फरमाया कि गोया नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि नींद की जो मकदार इंसान की जरूरत है उसको पूरा करना जरूरी है। तो नबी अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं वही तो दीन होता है, तो दीन में साबित हो गया कि भाई नींद की जरूरत को पूरा करना यही दीन है। बनी असद की एक औरत थी जो बहुत इबादत गुजार थी, वो भी पूरी पूरी रात जागती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी पैगाम भिजवाया कि तुम नींद भी किया करो और जब जागो तो नमाज भी पढ़ा करो, क्योंकि ये नींद इंसान की जरूरत है जिस तरह खाना पीना जरूरत है, जिस तरह खाना पीना जरूरत है, नींद भी इंसान की जरूरत है, अच्छी नींद भी जिस्म की जरूरत है। ठीक है, तो साजिद ने थोड़ा सा सर्च किया तो ये भी हदीस 1100 वाली हदीस ये नहीं थी। ठीक है, लेकिन हदीस नंबर 1151, ठीक है, उसके ऊपर इन सहाबिया का जिक्र था, लेकिन वो जरा डिफरेंट अल्फाज में था। हमने उसको नोट कर लिया कि भाई जो 1151 वाली हदीस है ना सही बुखारी की, तो उसमें यह था कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि कानत इंदी इमरातुन मिन बनी इसराइल, मेरे साथ जो है ना वो एक बनी इसराइल की, सॉरी बनी असद की, बनी इसराइल नहीं बनी असद की एक औरत जो है ना वो मेरे पास बैठी हुई थी। दखल अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के नबी अलैहि सलाम घर में दाखिल हुए तो वो औरत बैठी हुई थी। अब अगर पर्दे के अहकाम आ चुके होंगे तो बैठी हुई होंगी, ठीक है, क्योंकि पर्दे का हुक्म तो 5 हिजरी में आया। ये तफसील हमें नहीं देखने का मौका मिला कि पर्दा के हुक्म आ चुका था कि नहीं आ चुका था, लेकिन हम यही गुमान करेंगे अगर आ चुका होगा तो बुर्के में बैठी हुई होंगी, और अगर नहीं आ चुका होगा तो वो वैसे ही बैठी हुई होंगी बगैर बुर्के। तो नबी अलैहिस्सलाम दाखिल हुए, फकाला मन हाजी, ये कौन है, ये औरत कौन है? तो वो कुल, तो मैंने कहा, आयशा सिद्दीक फरमाती है, फुलानतुन ला मनामु बिल्लैली, ये फुलानी औरत है, ये रात में नहीं सोती। अब आयशा सिद्दीक रहता इंट्रोड्यूस कैसे करवा रही है उसकी, यानी ये बात इतनी आउटरेजियस किस्म की बात थी, ये इतनी जो है ना वो एक खास किस्म की बात थी कि उसका तारुफ ही मैंने कैसे करवाया ये कह करके, ला मनामा बिल्लैली, ये रात को नहीं सोती है, फुज़ुकिरा मिन सलातिहा, तो उसकी नमाज के बारे में पे तस्करा किया जाता है। ठीक है, कि ये रात और रात भर जो नहीं सोती है ना तो ये नमाज पढ़ती है, यानी क्या अजीब औरत है कि सारी सारी रात नमाज पढ़ती रहती है। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये सुन करके फरमाया, फकाला माह, माह का जो लफ्ज है ना वो जजर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी डांट के लिए इस्तेमाल होता है, माह कि जैसे रुक जाओ, बाज आ जाओ अपनी इस हरकत से। ठीक है, फरमाया माह अलैकुम मा ततीकून मिनल आमाली, कि तुम्हारे ऊपर जो है ना जिम्मेदारी वो उतने आमाल की है जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है, जितने तुम्हारे अंदर ताकत है। फ इन्ना ला यमल्लू हत्ता तमल्लू, कि बेशक अल्लाह ताला जो है ना वो तो नहीं थकता लेकिन तुम थक जाते हो। ठीक है, तो ये जो थकन वाला मामला है ना ये अल्लाह के साथ तो नहीं है लेकिन तुम्हारे साथ तो है ना, इंसानों के साथ तो है ना, तुम थक जाते हो। थक जाने का मतलब क्या कि तुम्हारी जो 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 जिस्म है ना, तुम्हारा जो बदन है ना, वो नॉर्मल फंक्शनिंग करने के काबिल नहीं रहता। थकन की डेफिनेशन क्या होगी? थकन की डेफिनेशन ये होती है कि अब आप नॉर्मल फंक्शनिंग करने के काबिल नहीं रहे। तो ये अल्लाह के साथ नहीं है, अल्लाह ताला नेवर गेट्स टायर्ड, यानी अल्लाह ताला की नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर कोई कमी नहीं आती। अल्लाह ताला जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारा ऐसा मामला नहीं है, तुम्हें अल्लाह ताला ने लिमिटेशंस के साथ पैदा किया है, कमी कमजोरी के साथ पैदा किया है। तो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने नींद का निजाम बनाया है, नॉर्मल फंक्शनिंग को रिवाइव करने के लिए नींद का निजाम बनाया है, खाने पीने का निजाम बनाया है, तफरी और बातचीत का निजाम बनाया है, सोशलाइजिंग का निजाम बनाया है, ठीक है, खानदानी निजाम बनाया है, मुआशरती निजाम बनाया है। अगर तुम सिर्फ काम करते रहोगे, सिर्फ जो अलग थलग रहोगे, सिर्फ जो है वो इबादत करते रहोगे, तो तुम नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो फरमाया कि नहीं, वाह बाज आ जाओ इससे, ठीक है। तो अब ये दीन की तालीमात हमारे सामने आ गई, हदीस मुबारक से, बुखारी शरीफ की हदीसों से। और क्या चाहिए हमें साबित करने के लिए? एक तो कुरान मजीद की आयात तो हम पढ़ते ही हैं हर मरतबा खुतबे में, बुखारी शरीफ के अंदर मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ गई। सुना है कि निकोटीन चाय में भी होती है, जिसको पीने के बाद नींद नहीं आती है। निकोटीन चाय में पता नहीं होती है कि नहीं होती है, कैफीन का तो सुना है कि चाय में होती है, लेकिन जो आप कह रही है ना कि निकोटीन चाय में होती है, तो उससे मेरे ध्यान में ये ख्याल आया कि जो वो वाली चाय होती है ना, उधर क्या कहते हैं उसको, ऊंची चाय या पता नहीं कौन सी, वो मसाले वाली चाय जो कि आमतौर पर जो है ना ये उधर मिलती है, चाय के खोखों पर मिलती है या होटलों में मिलती है, उसमें वो उल्टी सीधी और चीजें मीठा डालते हैं, वो नॉर्मल चाय नहीं होती। और वो डालते किस लिए है कि उसके अंदर ऐसा टेस्ट आ जाए या उसका ऐसा इफेक्ट हो जाए कि फिर हमारे ये कस्टमर बन जाए। और फिर वो ऐसे ही होता है, इंडिया में भी ये बात बहुत सुनी है और पाकिस्तान में भी ये हरकतें बहुत हो रही हैं कि वो खोके वाले जो लोग अपनी चाय बेच रहे होते हैं, तो उनके ऐसे पक्के कस्टमर बन जाते हैं कि फिर वो हमेशा उन्हीं के पास चाय पीने के लिए आते हैं, रेगुलर कस्टमर्स बन जाते हैं। तो वो फिर अपनी चाय के अंदर जो है ना वो इस तरह की चीजें एक्स्ट्रा डालते हैं, जिनमें के हो सकता है तंबाकू भी डालते हो, ठीक है, यानी एडिक्टिव किस्म की, जो कि आपको नशे वाला बना दे, उनकी चाय का नशा चढ़ जाए आपके ऊपर, ठीक है। तो फिर वो जाहिर है तंबाकू के अंदर तो नशा होता है, निकोटीन तो तंबाकू में होता है, तो वो हो सकता है तंबाकू भी डालते हो चाय के अंदर, ठीक है। ये हो गया इस्लाम ने नींद के मुताबिक इस्लाम की तालीम। अब अगला जो पॉइंट है ना वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे, स्लीप डिसऑर्डर यानी इंतशारे नींद की अलामत। पढ़ने के लिए तो आपके सामने भी हाजिर है, आप खुद भी पढ़ सकती हैं उसको, लेकिन जैसा हमारा क्लास के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन होती है वो फिर हम इंशाल्लाह क्लास के अंदर अल्लाह की तौफीक से कर लेंगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।